بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل من يسرع من الريح. ہوا سے یا مرغی کی وجہ سے جس شخص کو پچھاڑ دیا جائے یا متاثر ہو جائے اس کے بیان میں یہ باب ہے. اس باب میں روایت ہے حضرت عطاء ابن ابی رباح سے, وہ نقل فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الا اریک امرأة من اہل الجنہ, ایک مرتبہ فرمایا کہ کیا میں تم کو جنتی عورت نہ دکھا دوں. قلتو, عطاء ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ میں کہنے لگا کہ بلا کیوں نہیں, ضرور بتائیے آپ. قالا, تو ابن عباس نے فرمایا کہ ہذہ المرأۃ السودا, کہ یہ سیاہ فام عورت ہے. اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی. فقالت, اور اس نے کہا تھا کہ انی اسرع, کہ مجھے مرگی ہوتی ہے, اس میں مبتلا ہوتی ہوں. وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ, اور میں اس وقت جو ہے بے صدر ہو جاتی ہوں, بے کپڑے ہو جاتی ہوں. فَادْعُوا اللَّهَ لِي, تو آپ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے. قَالَ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شئت صبرتی ولک الجنہ, اگر تم چاہو تو تم صبر کر لو اور تمہارے لیے جنت ہوگی. وَإِن شئت دعوت اللہ ان يعافيك, اور اگر تم چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا, اللہ پاک تم کو عافیت عطا فرمائیں گے. فقالت, تو وہ کہنے لگی اصبر, میں صبر کرتی ہوں. فقالت, پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ انی اتکشف فدع اللہ ان لا اتکشف فدعا لها, کہ اللہ کے رسول, جس وقت وہ مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو میں اس وقت, یعنی کپڑے میرے جسم سے ہٹ جاتے ہیں, آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ میں اس وقت جو ہے نا بے کپڑے نہ ہوں, میرا ستر نہ کھلے. فدعا لها, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرغی کے دورے پڑتے ہیں ان سے متاثر جو ہے ایک خاتون تھی, اس بارے میں روایت کا ذکر فرمایا. ان کا نام تھا ام زفر, عموماً روایات میں ان کا نام یہی نقل کیا جاتا ہے کہ وہ ام زفر تھی. جب دورے پڑتے تھے تو حالت ان کی یہ ہو جاتی تھی کہ کپڑے ہٹ جاتے تھے جسم سے, بے اختیاری کی حالت ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ, صورتحال ایسی ہے, میں کیا کروں؟ تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ چاہے تو صبر کر لو, جنت مل جائے گی, اور اگر چاہے تو اللہ سے دعا کروں گا, اللہ پاک عافیت عطا فرمائیں گے. تو خاتون کہنے لگی کہ یا رسول اللہ, تب تو میں صبر کرتی ہوں. تو صبر انہوں نے کیا, البتہ ایک اور دعا کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ, جس وقت میں مجھے یہ مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو اس وقت جو ہے کپڑے جسم سے ہٹ جاتے ہیں, تو میرے لیے بڑی شرمندگی اس میں ہوتی ہے, تو آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ میرے کپڑے نہ ہٹا کریں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اور اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد دورے تو پڑتے تھے لیکن جسم سے کپڑے نہیں ہٹتے تھے ان کے, یہ صورتحال ہوتی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر اگر صبر کیا جائے تو اس کی بڑی فضیلت ہے. ان دوروں سے متاثر جو خاتون تھی ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی, بہت بڑی بات ہے. اب یہ جو دورے ان کو ہوا کرتے تھے, علماء نے لکھا ہے کہ اس میں دونوں رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی کے دماغ وغیرہ میں ہوا جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے, جس کے نتیجے میں یہ دورے آتے ہیں, جسم میں جو ہے اس طرح کی ہوائیں وغیرہ چلی جاتی ہیں. دوسری رائے علماء کی یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ شیاطین کے اور جنات کے جسم میں داخل ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, داخل ہو کر جو ہے نا انسان کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ دونوں واقعات ہوتے تھے بہت سے, یعنی کچھ صحابیات, کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ حضور کے آپ کی موجودگی میں جو ہے یعنی خاتون لائی گئی جن کا اثر تھا, جن سے متاثر تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اتارا بھی ہے ان کا. ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ جن سے متاثر تھیں, شیطان وغیرہ اس کے اندر تھا, تو فرمایا کہ اخرج, نکل جا باہر, تو نہیں نکلا, تو حضور نے فرمایا کہ باہر نکل, اللہ کے دشمن, میں رسول اللہ ہوں, تو پھر وہ نکل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بولی کا فتح نکالنے کے لیے, ابھی ہم یہ آج کے زمانے میں تو علاج کے لیے مہینوں لگ جاتے ہیں, آدمی کی روحانیت کا اثر ہوتا ہے وہ. ہاں, حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ تو یہ تھا کہ بھائی وہاں تو ساتھ میں رہنے والا مسلمان ہو گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی تھی, ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے, ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جس کو قرین کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ کے ساتھ وہ بھی تھا, تو حضور نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ فاسلما, تو तो वो जो है ना इस्लाम ला लिया है। उलमा की दोनों राय हैं वहाँ पर कि इस्लाम ला लेना मुराद है या फर्माबरदार हो जाना मुराद है, न सताना मुराद है, क्या है। तो बात कहते हैं कि वो हकीकत ही पर मैमूल है कि वाकईतन वो मुसलमान हो गया था, अल्लाह पाक उसको चाहे तौफीक दे दे ईमान की। और बाद ये फरमाते हैं कि नहीं, असल में यानी आप वसल्लम को फिर वसाविस नहीं डालता था, वो था तो वो जिन, वो तो शैतान है, वो तो इस्लाम क्यों कबूल करने लगा भाई, इस्लाम तो वो कबूल नहीं करेगा। वो तो वहाँ इस्लाम लाने से मुराद ताबे हो जाना मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे वो हो गया था, हुजूर को बहकाता नहीं था, वसवसे नहीं डाला करता था। तो बहरहाल लेकिन ये बात है कि जिन्नात से मुतासिर, यहीं उलमा ने एक बहस ये लिखी है फिर, क्योंकि जिन्नात से और शयातीन से लोग मुतासिर होते हैं और इंसानी ज़िंदगी में उनका बड़ा अमल दखल होता है। इसीलिए हदीस में पहले रिवायतें भी आई हैं कि रात के वक्त में दरवाज़े बंद कर लिया करो, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, या मग़रिब का जब वक्त होता है सूरज के ग़ुरूब होने का तो अपने बच्चों को बाहर न भेजो उस वक्त में, वो मुंतशिर होते हैं तो जाते जाते धप्पे लगा के चले जाते हैं या सता के निकल जाते हैं फिर, वो तो उनका अपना वजूद है और वो इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं। बाज़ जमातें हैं जैसे मुतज़िला वगैरह, उन हजरात का कहना यह था कि अवलन तो वो है ही नहीं, दूसरा यह है कि अगर होंगी भी तो इंसानी जिस्म में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन दाखिल होते हैं, हदीसों में इसका तذکرہ है, अल्लाह के नबी ने निकाला भी है। और कुरान पाक में है ना कि जो सूर खोर हैं वो क़ियामत में इस तरह उठेंगे कि जिस तरह वो आदमी मखबूतुल हवास होता है जिसको जिन लग जाता है, यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, जिनके लगने से जो आदमी यानी बेहुदा हरकतें यानी हवास जिसके उड़ जाते हैं और वो अजीब व गरीब हरकतें करता है, तो सूद खोर भी क़ियामत में उसी तरह उठाए जाएंगे कुरान पाक में। तो इससे मालूम हुआ कि भाई ये जिन्नात और शयातीन के असरात होते हैं, वो इंसानों को परेशान करते हैं। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है आकामुल मरजान फ़ी आकामिल जान, तो उन्होंने उसमें लंबी चौड़ी पूरी तफसील लिखी है कि वो करते क्या हैं, कैसा पैदा हुए हैं, किस तरह मुतासर होते हैं, उनसे हिफाजत के तरीक़े क्या हैं वगैरह वगैरह। आसान तरीका यही है कि आदमी बावजू रहे, नंबर एक बहुत आसान तरीका है, मसनून तरीका है, इबादत का इबादत है, सवाब के सवाब है। वजू जो है हम इसको बहुत मामूली समझते हैं, ये बात याद रखें, वजू ये मामूली इबादत नहीं है, यानी करने में तो बहुत मामूली है, असर के एतबार से बहुत मुअसर चीज़ है ये। बावजू हमेशा रहना चाहिए, जो बावजू होता है पाकीज़ा होता है, पाक और साफ़ सुथरा होता है, असरात मुतासिर नहीं, सहर का असर उस पर ज़्यादा असर नहीं होता, जल्दी से ऐसा आदमी जो है ना सहर से मुतासिर नहीं होता, और जिन्नात और शयातीन का गलबा नहीं होता ऐसे शख्स के ऊपर, एक तो ये होता है। दूसरा यह है कि सुबह और शाम के अस्कार जो है ना करने का अहतमाम करना चाहिए, सुबह और शाम के जो अस्कार होते हैं, सूरह फातिहा है, आयतुल कुर्सी है, चारों कुल है, सूरह इखलास है, फलक है, नास है वगैरह, इनके पढ़ने का अहतमाम करें, तीन तीन मरतबा, सात सात मरतबा, ग्यारह ग्यारह मरतबा, आदमी अपने अपने एतबार से मकदार बढ़ा लें, हालात ज़्यादा आ गए तो ज़्यादा पढ़े, नॉर्मल चल रहे हैं तो जो है हिफाजत के लिए मसनून तरीके पर तीन तीन मरतबा भी काफ़ी है। बहरहाल जाहिर सी बात है कि डोज़ आदमी के अतबार से कम ज़्यादा होते रहते हैं या हालात के अतबार से कम ज़्यादा होते रहते हैं, वो तो करने पड़ते हैं, लेकिन फी नफ्सी ही इंसान को, चूँकि अल्लाह के नबी भी किया करते थे, वो शहर से हुजूर भी तो मुतासिर हुए थे ना, लबीद इब्न आसिम की बेटियों ने जादू कर दिया था अल्लाह के नबी के ऊपर, सूरह फलक और सूरह नास उसी पस मंज़र में नाजिल हुई हो तो, और वो भी हुजूर के बाल को लेकर, बाल लेकर बाल में गीठियां मारकर जो है वह एक कुआं था, वो कुएं में जो है ना ले जाकर डाल दिया, और वो भी तह में बिल्कुल, आप हज़रत जिब्राइल आए और आकर बताया कि आपके ऊपर सहर हो गया और आपका ये मालूम हो गया, दो फरिश्ते आए थे हुजूर को ख्वाब में आपने देखा, फिर वो तो हज़रत अली को और दीगर साहबा को भेजा तो वो गए जाकर लेकर आए, तो आपके बालों में जादू किया गया था और वो जो बाल थे उसमें गीठियाँ लगी हुई थी, आप एक एक आयत पढ़ते जाते थे सूरह फलक की सूरह नास की, उसको खोलते जाते थे, तो इस तरह सहर का असर जायल हो गया। और उसका असर ये होता था कि हुजूर को भूल हो जाया करती थी, नबी हैं, नबी भी मुतासिर हो सकते हैं, भूल ये होती थी, उलमा ने लिखा है कि भूल दुनियावी उमूर में नहीं हुआ करती थी, दीनी उमूर में नहीं होती थी, दुनियावी उमूर में भूल हो जाया करती थी कि मैं ये काम किया या नहीं किया, समझते थे कि मैं कर दिया हालांकि नहीं किए होते थे, या कभी कभी ये होता था कि नहीं किया हालांकि उसको कर दिया होता था आपने, तो ये भूल हो जाया करती थी, उसके बाद वो असर ख़त्म हो गया। इससे मालूम हुआ कि सहर की अपनी एक हकीकत है और जिन्नात की और शयातीन की अपनी एक हकीकत है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता, बस उनसे हिफाजत की जो दुआएं हैं उसका अहतमाम करना चाहिए। तो यहाँ एक बात तो यह मालूम ही इस हदीस मुबारका में कि हो सकता है कि इनके ऊपर जो मिर्गी का दौरा पड़ता था या उस जैसे जो दौरे आते थे वो जिन्नात के असरात की वजह से भी हो सकते हैं। उलमा हाफिज़ इब्न हज़र अस्क़लानी ने अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात लिखी है, और सब्र करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी उस बीमारी पर सब्र, इससे सहाबा का मिजाज भी मालूम होता है, जन्नत के लिए दुनिया को कुछ समझते ही नहीं थे वो लोग, तो कहने लगे यार हम अगर हमारे लिए यानी कुछ छोटी मोटी मुसीबत परेशानी आए जन्नत का मामला बाद में देखेंगे भाई, पहले बीमारी हट जाए हमसे, पहले हमको आफियत मिल जाए, पहले हमको सुकून मिल जाए, ये हमारा जो है ना ख्याल होता है। सहाबा को अल्लाह के नबी ने कह दिया कि या तो बीमारी ले लो या जन्नत ले लो, फरमाया कि रसूल अल्लाह बीमारी को तो झेल लेंगे, जन्नत हमको मिल जाए बस, ये उनके एक मिजाज का इल्म, और उससे अंदाज़ा होता है कि किस दर्जा जो है ना वो, यानी एक तो आखिरत पर उनका ईमान था, और किस दर्जा वो जन्नत जो है ना, उन जन्नत को वो तलब किया करते थे। लेकिन इसमें अल्लाह के नबी ने जन्नत की जो फजीलत और बशारत दी है उसके लिए फरमाया कि इनशी इति सबर थी वलकिल जन्ना, ये जन्नत जो मिलेगी इस बीमारी पर सब्र करने की बुनियाद पर मिलेगी। अगर सब्र नहीं है तो भी जन्नत नहीं मिलेगी, शिक पे शिकायत हो गया तो भी जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए बीमारी आ जाए या माली मुसीबत आ जाए या जिस्मानी मुसीबत आ जाए या कोई मसला या कोई गम की बात पेश आ जाए, जब सब्र करेगा आदमी तो उसके ऊपर जो है ना उसको फजीलत हासिल होगी और सब्र का जो है ना बदला बेहतरीन मिलेगा अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से। और सब्र नहीं होगा, शिकवा शिकायत हो गई तो नहीं मिलेगा, फजीलत नहीं मिलेगी, अजर नहीं मिलेगा। एक मरतबा एक बच्चे का इंतकाल होगा, एक सहाबिया रो रही थी, गालिबन कब्र के पास ही ठहर कर अपने बच्चे के हवाले से रोने लगी। हुजूर पाक सल्लम का गुजर हुआ तो हुजूर ने फरमाया कि भाई सब्र कर, इस मेरी वाहता से भी सब्र करो, सवाब की नीयत रखो, अल्लाह पाक अजर देंगे। तो कहने लगी कि आपको क्या पता मेरी बीमारी, मेरी मुसीबत का, मेरे ऊपर जो गुजर रही है मैं जानती हूँ, आप तो चलते चलते एक नसीहत करके चले गए। तो उनको नहीं मालूम था उन सहाबिया को ये अल्लाह के नबी हैं। तो लोगों ने बताया कि कौन थे मालूम है, तो कहने लगे कि नहीं, सहाबा ने कहा कि वो अल्लाह के नबी थे जो तुझको नसीहत करके गए हैं, और तूने इतना बड़ा जुमला उनको कह दिया। तो भागते भागते सीधा हुजूर के पास आई और आकर कहने लगी, रसूलल्लाह मुझे मालूम नहीं था ये कि आप अल्लाह के नबी हैं और मैंने ऐसा जुमला आपको कह दिया है। मौत जैसा पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा था कि नबी को इस तरह के जुमले और इस तरह की जो है ना बेएतनाई से वो पेश आ गए। तो हुजूर ने फरमाया कि वो तो ठीक है, लेकिन सब्र की बुनियाद पर जो अजर मिलता है तो वो जब सब्र जब मुसीबत पेश आ जाए, अस्सब्रु इंद सदमति लूला, जब मुसीबत आए तो उसी वक्त सब्र करो तो उस पर अल्लाह तबारक व ताला फिर अजर अता फरमाते हैं। जब बेटे की मुसीबत यानी बच्चा इंतकाल कर गया, वहाँ पर तो तुम जदा फजा कर रहे हो, शिकवे शिकायत कर रहे हो, और बाद में जो है ना हमारा हाल यही होता है कि वक्ती तौर पर मुसीबत में बहुत ज़्यादा गम शिकवे शिकायत हो जाते हैं, उसके बाद ठीक है भाई सब्र कर लेते हैं। तो अब उसके बाद का सब्र सब्र नहीं है, सब्र तो उस वक्त करना है जब आप परेशान हैं, सब्र तो उस वक्त करना है जब बीमारी आ गई, जब मुसीबत आ गई, जब परेशानी आ गई, वहाँ पर सब्र करना है। जब आप शिकवे शिकायत से जी भर गया अब उसके बाद सब्र करने बैठेंगे तो ये सब्र नहीं है, ये तो आपकी बेबसी है, ये तो मजबूरी है, इसके कोई इसका कोई अजर नहीं मिलेगा अल्लाह तबारक व ताला के। इस हदीस के तहत में उलमा ने एक मसला ये भी लिखा है, वही मसला लिखा है कि इलाज के मुकाबले में अगर आदमी को अपनी अपनी ज़ात पर हिम्मत और कुदरत है, यानी इस्तात है, और उसके अंदर ऐसी हिम्मत है कि मुसीबत को झेल ये बीमारी को बर्दाश्त कर सकता है तो बर्दाश्त करना चाहिए, आखिरत में अजर सवाब की नहीं है, से इलाज मुआलजा ना कराए अगर हिम्मत है, वरना ये आम आदमियों के लिए तो नहीं है, ये तो जाहिर सी बात है कि आला दर्जे के लोगों के लिए है। उसके बाद दूसरी रिवायत है, अच्छा उसमें यह है कि अखबरनी आताउन इब्ने जुरैज कहते हैं कि हजरत आता ने जो है ना मुझे खबर दी है, अन्नहु रा उम्मे ज़ुफ़रा तिल्का इमरातन तवीलतन सऊदा आला सितरिल काबा, कि उन्होंने उम्मे ज़ुफ़र को देखा कि वो एक लंबी औरत थी जो सियाह फाम थी और काबे के पर्दे को थामी हुई थी। जिस वक्त उनके ऊपर तबीयत ख़राब होने लगती थी तो काबे के पास आ जाया करती थी और उस वक्त अल्लाह से दुआ मांगा करती थी, काबे से लिपट जाया करती थी। तो बहरहाल सहाबा ने उनको देखकर फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इनके लिए जन्नत की बशारत दी है, अगर किसी जन्नती खातून को देखना हो तो इनको देख लिया करें। उसके बाद रिवायत है, बाब फ़ज़्ल मन साहब मन ज़हब बसरुहु, ये उस शख्स की फजीलत का बाब है जिसकी बीनाई चली जाए, यानी नाबीना की फजीलत के बयान में, आँखों की बीनाई जब चली जाती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके बदले में ऐसे शख्स को जन्नत अता फरमाते हैं। जो भी असल में यही मसला है कि बंदे को जब मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, बीमारी लग जाए तो अल्लाह पाक की तरफ से इनाम होता है उस बंदे के लिए, लेकिन शर्त यही है कि उस बीमारी में आदमी जो है ना सब्र से काम ले, अल्लाह के उस फैसले को फैसला अल्लाह का फैसला समझ कर उस पर राज़ी रहे। यहाँ पर यही रिवायत है, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि समीअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, इन अल्लाह ताला कल, कि बेशक अल्लाह ने इबादत इरशाद फरमाई, इदब तलई तो आबदी बे हबीबतई ही फ़सबरा अवस्तु मिन हुमा अलजन्नता, ये दुआई नहीं है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा या जब मैं किसी बंदे को मुबतला करता हूँ उसकी दो महबूब चीज़ों के साथ, फिर वह सब्र करता है तो मैं उसको जन्नत का जो है ना बदला दिया करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा जो है ना वो दोनों आँखें थी महबूब चीज़ों से, जाहिर सी बात है कि आदमी आंखें जो है ना आदमी को कितनी महबूब हैं हर आदमी जानता है, हदीस में इसको महबूब बताया गया, यानी इंसानी ज़िंदगी जो है ना इसके बग़ैर एक माने में नाक़िस और नातमाम नज़र आती है, और बहुत बड़ी नियामत है अल्लाह तबारक व ताला की है। तो इसलिए जब किसी बंदे को अल्लाह पाक बीनाई से महरूम कर देते हैं और वह उस पर सब्र करता है तो हदीस में यह है, यहाँ पर भी यही है कि जन्नत देता हूँ, और बाद रिवायतों में ताबीर बदली हुई है, फरमाया कि उसका बदला सिवाय जन्नत के कुछ और हो ही नहीं सकता। ये बात हुजूर ने इशारा फरमाई नबीना के बारे में, तो उन लोगों के लिए बड़ी फजीलत है। दुनिया की नेमतों से जो है ना वो महरूम होते हैं, दुनिया की लज्जतों से महरूम होते हैं। जाहिर सी बात है कि आदमी बड़ी जो कुर्बानियाँ वो देता है नाबीना शख्स, उसको बयान नहीं कर सकते। जज्बात की जो कुर्बानी होती है, ख्वाहिशात की कुर्बानी होती है, नाबीना है ना, माँ को देख पाया ना बाप को देख पाया, शादी हो गई, औलाद को नहीं देख सकता, भाई बहनों को नहीं देख सकता, रिश्तेदारों को अपने नहीं दे सकता, खुशी और गम में जो है ना आदमी शरीक नहीं हो सकता, महरूम है, तो आंखें बंद करके बैठा हुआ है, नजर ही नहीं आ रहा, लोग खुश हो रहे हैं, तो बड़ा जो है यानी उसके लिए तकलीफ़दा मरहला होता है। वो किसी गम में शामिल नहीं है, किसी खुशी में शामिल नहीं है, किसी खुशी को अपनी आंखों से देखकर जो है ना वो खुशी दिल में महसूस नहीं कर सकता है। तो उसके इस सब्र की बुनियाद पर, उसकी इस कुर्बानी की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व ताला जो है ये बदला अता फरमाते हैं। उसके बाद बाब है बाबू अयादत निसाई अर रिजाल, औरतों का मर्दों की इयादत करने के बयान में यह बाब है। वआदत उम्मुद दरदा रजुल मिन अहलिल मस्जिद मिन अल अंसार, हजरत उम्मुद दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अंसार में से एक शख्स की इयादत की थी जो मस्जिद नबवी से ताल्लुक़ रखा करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर एक तो सहाबिया का अमल नकल किया और आगे रिवायत भी नकल कर रहे हैं। तो फरमाते हैं कि अगर ख़वातीन मर्दों की जो है इयादत के लिए जाएँ तो उसकी गुंजाइश है, लेकिन शर्त यह है कि फितने का अंदेशा नहीं होना चाहिए, बेतकल्लुफ़ी नहीं होनी चाहिए, जाकर पर्दे में रहकर हिजाब में जाकर इयादत करके आ जाएँ। जैसे हज़रत उम्मुद दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो है ना इयादत की थी, अगरचे कि हज़रत उम्मुद दर्दा का जो वाक़िया है वो हिजाब से पहले का वाक़िया है, लेकिन उलमा ने लिखा है कि असल मेन जो बुनियाद है वहाँ पर फितना है, तो चाहे हिजाब से पहले हो हिजाब के बाद हो, फितने से अगर बच रहे हों तो जैसे दीगर मौाक़े पर जाना आना मिलना साहब यानी उसकी गुंजाइश है, तो इयादत भी जाहिर सी बात है कि शरीय एक हक़ होता है, एक मुसलमान का हक़ होता है, तो अगर अपने अपने मुतालिकीन की जो है इयादत के लिए चले जाए तो ख़वातीन के लिए उसकी गुंजाइश है। इस बाब में दूसरी रिवायत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है, वो फरमाती हैं कि लम्मा क़दिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमदीना तबुईका अबू बकर व बिलाल, कि जब अल्लाह के नबी मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो सख्त बुखार में मुबतला हो गए। कालत फरमाती हैं फ़दखल तो अलैहिमा, तो मैं उनके पास दाखिल हुए, हज़रत बिलाल के पास भी, हज़रत अबू बकर के पास भी, और मैं कहने लगी कि या अबदी कैफ़ तजिदु, ए अब्बा जान आप कैसे महसूस कर रहे हैं, तबीयत आपकी कैसी है, और कई फतरी दो। उसके बाद फरमाया कि वो या बिलाल कई फतरी दो, ए बिलाल आपका क्या हाल है, आप भी जो है ना बीमार लग रहे हैं, सख्त बीमार हैं, बुखार में हैं। तो कहा तो फरमाती हैं कि वकान अबू बकर इदा अखदतुल हुम्मा यकूल, हज़रत अबू बकर जब भी उनको बुखार आ जाता था तो ये कहते थे कि कुल्लु इम मुसब्बहुन फ़ी अहलिही वल मौतु अदना मिन शराकिन अलैही, हर आदमी जो है अपने घर वालों में सुबह बखैर से याद किया जाता है, या घर वालों में जो है सुबह बखैर के लफ्ज़ से या दुआ से जो है ना उसको नवाजा जाता है, हालांकि मौत जो है ना उसके जूते के तस्मे से ज़्यादा करीब होती है। उसके बाद वकान बिलाल इदा अक़लअत अन्हु यकूल, और हज़रत बिलाल भी ये शेर पढ़ा करते थे, अला लैला शअरी हल अबीतन लैलतन बिबादिन वहौली इदखुरुन वजलीलु वहल अरीदन यौमन मियाह मि जन्नतिन वहल यब्दून अली शामतन वतफीलु। हज़रत बिलाल कहते थे कि काश मदीने में जो काश मैं उन वादियों में एक रात गुजार पाता, यानी मक्का मुकर्रमा की वादियों में, कि जहाँ मेरे अतराफ़ में इज़खिर नामी और जलील नामी घास हुआ करती, वहल अरिदन यौमन मियाँ हमिजन्ना वहल यब्दून अली शामतुन व तफील, और काश के मैं मिजन्ना के कुओं के पास एक दिन आता और काश के मेरे लिए शामा और तफील होते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और मैंने खबर दे दी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के बारे में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-मदीना का हुब्बिना मक्कता व अशद्दा, अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दीजिए जैसा कि मक्के की मोहब्बत है या उससे भी ज़्यादा मोहब्बत पैदा फरमाइए। उसके बाद फरमाया कि अल्लाहुम्मा वसहिहा, ए अल्लाह इसकी आबो हवा को सही फरमा दीजिए, मुआफ़िक बना दीजिए हमारे, वबारिक लना फ़ी मुद्दिहा वसाईहा, और हमारे इसके मुद में और इसके साह में बरकत अता फरमाइए, वनकुल हुम्माहा फजअलहा बिलजुहफा, और इसके बुखार को मुंतकिल कर दीजिए और जुहफा में मुंतकिल फरमाइए। ये रिवायत है। इस रिवायत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की यादत के लिए जाना साबित होता है, और दूसरा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यादत के लिए जाना। तो हज़रत बिलाल ज़ाहिर सी बात है कि अजनबी हैं, कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, वो तो हबशा के रहने वाले थे। हज़रत आयशा ने यादत की है तो पता चला कि जो लोग जिनसे ताल्लुक़ अगर है तो चाहे वो अजनबी ही हों, अगर बीमार हो जाएँ तो उनकी यादत के लिए ख़वातीन जा सकती हैं। ये वाक़िया है जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है कि हिजाब से पहले का है, लेकिन उलमा ने लिखा है कि हिजाब के बाद भी अगर हिजाब वगैरह के साथ अगर इयादत वगैरह की जाए तो और इसमें कोई इसकी गुंजाइश है शरीयत में। अब वाकया जो है वो ये है कि हज़रत आयशा जब गई हज़रत बिलाल के पास, हज़रत अबू बकर के पास, तो हज़रत अबू बकर अपने अंदाज़ में एक शेर पढ़ते थे, हज़रत बिलाल अपने अंदाज़ में एक शेर पढ़ते थे। और असल जो बात थी वो ये थी कि जब मदीने मुनव्वर आए थे तो मदीने की आबो हवा मुआफिक नहीं थी, जो भी आता बीमार हो जाता था। यहाँ पर जो है कि बुखार, और बुखार जब आता था तो हद दर्जा बुखार आता था मदीने मुनव्वरा में। बाद में मुनव्वरा तो बाद में बनाओ, मदीना जो है ना मुनव्वर तो बाद में हुआ हुजूर की आमद से, हुजूर की दुआओं से, लेकिन उससे पहले जो है उस जगह को मनहूस समझा जाता था। तो इसलिए शुरू शुरू में वो लोग ये शेर पढ़ा करते थे कि काश हमें मक्के में रहने का एक मौका मिल जाता, वहाँ एक रात गुजार लेते थे। यहाँ जब से आए हैं बुखार में पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ दिन में बीमारियाँ, मुसीबतें, परेशानियाँ हमारे साथ लायक हो गई हैं। वाकया भी है ना, कबीले औरैना के लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, ये भी सही बुखारी में ही वाकया है। तो यहाँ आए तो यहाँ की आबो हवा उनको जमी नहीं, तो पेट फूल गए और बड़ी अजीब गरीब किस्म की बीमारियों में मुबतला हो गए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी बतलाया कि रसूल अल्लाह सूरत हाल ये है, क्या करें? तो हुजूर ने दुआ फरमाई, उसके बाद फरमाया कि भाई जाओ हमारे वहाँ सदक़े के ऊँट हैं, उन ऊँटों के पास जाओ और उनका दूध पी लो और उनका पेशाब पी लो। तो पेशाब यानी इजाज़त दी थी अल्लाह के नबी ने, शिफा का इल्म हुआ था कि पेशाब में शिफा है। तो पी लिया उन्होंने, दूध भी पी लिया, पेशाब भी पी लिया, शिफा मिल गई। तो शिफा मिलने के बाद जिन सहाबी की निगरानी में वो ऊँट चढ़ रहे थे सहाबा की, उन्हीं को मार दिया, और इतना सख्ती के साथ मारा कि उनकी आंखों में सलाखें लगा दी, जला दिया, मार दिया, मार के ऊँट लेके भाग गए। ऊपर से ये भी है, ऊँट लेके भाग गए वहाँ से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पीछे भेजा उनके कि जाओ इन लोगों ने यह हरकत की है। तो जाके सहाबा पकड़ कर लेकर आए तो अल्लाह के नबी ने भी उनके साथ वैसे ही सख्त मामला किया, उनको कत्ल करवा दिया। उनकी आंखों में हुजूर ने भी ये जो लोहे के रॉड्स होते हैं उनको जला कर उनकी आंखों में लगाया फिर, और उनको मदीने की पथरीली ज़मीन में गर्मी में छोड़ दिया, उसी में तड़पते तड़पते वो मर गए। अल्लाह के नबी जैसे उन लोगों ने किया था, अल्लाह के नबी ने भी किसास के तौर पर उनके साथ वैसा ही मामला किया। इब्तदा में जो अहवाल थे मदीने मुनव्वरा के वो यही थे कि यहाँ आते थे कि बड़ी बीमारियाँ आ जाती थी, तो सहाबा परेशान हो जाते थे। तो उस वक्त की बात है कि हज़रत बिलाल भी एक मरतबा बुखार में मुबतला हो गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी बुखार में मुबतला हो गए। जब इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए हैं तो आयशा पूछा कि अब्बा जान क्या क्या हाल है आपका? तो एक शेर पढ़ा, उन्होंने फरमाया कि उस मौके पर यह शेर पढ़ा था, कुल्लु मरीन मुसब्बहुन फी अहलिही वल मौत अदना मिन शराकिन अलैही। यानी आदमी जब सुबह करता है तो सुबह में जो है ना उसको सुबह बखैर कहा जाता है, गुड मॉर्निंग कहा जाता है हमारे, तो वहाँ तो उसके लिए दुआ हो रही है कि आपकी क्या है सुबह जो है ना अच्छी हो जाए, लेकिन मौत जो है ना उसके जूते के तस्मे से भी करीब होती है, यानी पता नहीं वो कब मर जाए। बुखार की शिद्दत में कि मौत ही याद, यानी आदमी जब सख्त बीमार हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में मौत ही याद आ रही होती है। तो फरमाते हैं कि मौत का तो पता नहीं होता, लेकिन सुबह बखैर की शाम बखैर की दुआएं दी जा रही होती हैं। तो उस बुखार की हालत में यह शेर उन्होंने पढ़ा, और उसी बुखार की हालत में हज़रत अबू बकर, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी ये शेर पढ़ा करते थे कि काश मदीने के अतराफ़ में, मदीने मक्के में जब रहते थे तो याद करके पढ़ा करते थे कि वहाँ एक रात गुजारने का दोबारा मौका मिल जाए, वहाँ की वादियों को याद करते थे, वहाँ के चश्मों को और पहाड़ों को याद किया करते थे, और ये फरमाते थे कि भाई वहाँ मौका मिल जाए तो मेरे लिए क्या ही अच्छा होता। लेकिन वहाँ से फिर उसके बाद वो बद्दुआ भी करते थे जो काफिरों की वजह से निकलने पर मजबूर हो गए थे उनके लिए, कि अल्लाह उन पर लानत फरमाए कि उनकी वजह से हम जो है ना मक्का मुकर्रमा जैसी अजीम जगह को छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं। तो खैर ये इब्तदाई बात है, लेकिन बाद में हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये वाक़या सुना दिया कि अबू बकर ये शेर पढ़ रहे हैं और बिलाल ये शेर पढ़ रहे हैं कि यहाँ की आबो हवा की वजह से परेशान है। तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अब अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनिल मदीना का हुब्बिना मक्का व अशद्दा, जैसे मक्के से हमको मोहब्बत है उससे भी ज़्यादा मदीने से मोहब्बत अता फरमाई है। चुनाचे दुआ का असर यही हुआ कि मदीने की मोहब्बत सारे दिलों के दिल में, यानी सारी उम्मत मुस्लिमा के दिलों में मदीने की मोहब्बत आज पाई जाती है, और बल्कि बहुत से लोग वो भी हैं कि मक्के से ज़्यादा मोहब्बत उनके दिलों में पाई जाती है। ये है, और फिर उसके बाद यहाँ वहाँ की आबो हवा के बारे में अल्लाह के नबी ने यह बात इशार फरमाई कि आबो हवा को भी मुआफ़िक फरमा दीजिए, और वहाँ के यानी खानों वगैरह में बरकत अता फरमाई है। तो अल्लाह ने फिर हर चीज़ में बरकत अता फरमाई, आबो हवा में भी ऐसी बरकत है कि आज मरीज़ सेहतयाब होने के लिए वहाँ पर जाते हैं, मरीज़ अगर जाता है वहाँ पर तो सेहतयाब हो के आ जाता है। ख़ासतौर पर मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में आदमी 8 दिन जाए, 8 दिन में पानी जो है ना लग जाता है आदमी के जिस्म को, सेहतमंद नज़र आता है। 8 दिन अगर वहाँ का पानी पी लेगा, मक्के का पानी हो या मदीना मुनव्वरा का पानी हो, आदमी की सेहत बदल जाती है। उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि यहाँ का जो बुखार है जोहफा में मुंतकिल कर दीजिए, जोहफा भी एक जगह है मुल्क शाम में, तो फरमाया कि वहाँ ले जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो है उस ज़माने में ये नसरानी थे और बाज़ रिवायत में यह है कि यहूदी वगैरह बसा करते थे, और शिद्दत पसंद थे वो लोग, बहुत ज़्यादा जो है मुतशद्दिद थे। तो हुजूर ने फरमाया कि वहाँ ले जाइए बुखार को, और उनको जो है क्या है आप यानी उन लोगों में जो है बीमारी फैला दीजिए ताकि मुसलमान सेहतयाब हो जाएँ। और इनकी ज़िंदगी जो है पुरसकून गुजरे। तो बहरहाल ये रिवायत है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस बाब से यही बात बताना चाहते हैं कि औरतें मर्दों की इयादत के लिए जाएं तो ठीक है। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर मदीने से मोहब्बत की दुआ करना भी मालूम होता है। एक मुसलमान के दिल में मदीने की मोहब्बत होनी भी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन है वो, आपका रोज़ा है, बल्कि वहाँ तो रियाजुल जन्ना भी है, जो वो बुका है रुए ज़मीन का, बल्कि रुए ज़मीन में सबसे ज़्यादा अगर मुक़द्दस जगह है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जगह है। उलमाए अहले सुन्नत जो फरमाते हैं कि काबतुल्लाह से भी ज़्यादा मुक़द्दस जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जगह है। यहाँ एक मसला ये चलता है कि काबा अफजल है या फिर रोज़े मुबारक अफजल है। तो बाज़ का नज़रिया तो ये है कि भाई काबा अफजल है, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ उसकी निस्बत है, लेकिन जमहूर उलमा का नज़रिया जो है, अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से ज़मीन का जो हिस्सा लगा हुआ है वो अफजल है काबे से भी, बल्कि वो उलमा ने लिखा है कि बल्कि वो आर्श से भी अफजल है। उसकी वजह यह है असल में कि यहाँ पर जो चीज़ अल्लाह के नबी के जिस्म को मस हो रही है तो मस होने की बरकत की वजह से वो फजीलत है। बकिया काबे की नस्बत जो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ की जाती है या आर्श की नस्बत जो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ की जाती है, तो ये नस्बत वो नस्बत नहीं है जैसे कि यानी एक जिस्म को दूसरे जिस्म के साथ जो लगी हुई होने की नस्बत होती है। हम कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी हमको लगी हुई होती है, तो आर्श ऐसा अल्लाह को लगा हुआ नहीं है। अल्लाह पाक तो उस वक्त इसे हैं जब आर्श नहीं था, ये भी तो हदीस में कान अल्लाह वलम यकुन माहू शय, अल्लाह तो उस वक्त इसे हैं जबकि कोई चीज़ नहीं थी। तो इसलिए अल्लाह जब थे ना पानी मौजूद था, ना आर्श मौजूद था, ना कुर्सी मौजूद थी, कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी, तो वो तो बाद में अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा फरमाया वो, और पहले से अल्लाह बेनियाज़ है और पैदा करने के बाद भी बेनियाज़ है। ये मसला बड़ा गड़बड़ी वाला मसला है हमारे ज़माने में। इस अल्लाह का जो मसला होता है, अल्लाह आर्श पर है नहीं है, ऊपर है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो एक मसला अलग है। लेकिन समझने की चीज़ ये है कि अल्लाह आर्श पर मुस्तवी हैं, तो मुस्तवी होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम आर्श पर और कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला भी आर्श पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो एक निस्बत है। जैसे काबतुल्ला अल्लाह का घर है तो अल्लाह आर्श में काबे में बैठे हुए हैं नहीं है। अल्लाह पाक के खास तजल्लियात का वो मरकज़ है, अल्लाह तबारक व ताला की खास रहमतों और बरकतों के नुजूल का वो मरकज़ है, वो रूहानियत का मरकज़ होता है वो। तो इसी तरह आर्श की निस्बत भी है। तो उलमा ने लिखा है कि जाहिर सी बात है कि आर्श को या काबे को अल्लाह तबारक व ताला के साथ जो नस्बत है तो वो नस्बत ताज़ीम और तकरीम के कबील से है। वो नस्बत ऐसी नहीं है कि काबे का जिस्म, काबे के पत्थर, काबे की जगह, आर्श और कुर्सी की जो जगह है अल्लाह के साथ मस हो रही हैं। मस होती तो जाहिर सी बात है, अगर अल्लाह पाक को जिस्म होता, वैसे तो है नहीं, अगर जिस्म होता मस होती तो फिर काबा भी अफजल होता और फिर आर्श भी अफजल होता, लेकिन ऐसी नस्बत नहीं है। इसके बरखिलाफ़ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जो जगह है तो उसमें जो मट्टी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे जैसा अथहर को लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि नबी के जिसमें से लगने की वजह से उसकी अजमत और फजीलत ज़्यादा है। ये अहमियत, ये असल रीज़न है उसका। तो बहरहाल मुसलमान के दिल में इसकी मोहब्बत होनी, मदीने की मोहब्बत होनी चाहिए, और अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है, और इसी वजह से सहाबा के दिल में भी ये मोहब्बत आ गई थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये दुआ किया करते थे उस वक्त कि अल्लाह मुझे मदीने में वफ़ात अता फ़रमाइए और शहादत की मौत अता फ़रमाइए। ये दोनों दुआएं हज़रत उमर किया करते थे, और फिर खुद ही सवाल करते थे अपने बारे में कि भाई मदीने में भी हो और शहादत की मौत हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि शहादत के लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा, मदीने में तो अब जंगें नहीं हो रही हैं, शहादत के लिए अब मुल्क शाम जाना पड़ेगा, रोम जाना पड़ेगा, इराक़ जाना पड़ेगा, फ़लाँ जगह जाना पड़ेगा। तो खुद ही सवाल करते थे लेकिन अल्लाह से दुआ करते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने दुआएँ दोनों दुआएँ कबूल फ़रमाईं कि हज़रत उमर की शहादत भी हुई और मदीने ही में हुई। कि अबू फेरोज़ लूलू जो है ना, वो अबू फेरोज़ आया था ग़ुलाम और आकर जो है ना हज़रत उमर को शहादत यानी शहीद कर दिया। उसने फजर की नमाज़ में आया, नेज़ा मारा तो उसकी वजह से शहीद हो गए। 3 दिन तक बीमार थे और बाद में यानी इतना शदीद ज़ख्म था कि कोई चीज़ खाते थे तो ज़ख्म से निकल जाती थी, वो ज़ख्म से चीज़ दूध निकल जाया करता था, ऐसे शदीद बीमार। अंदाज़ा हो गया कि अब जाने वाला हूँ। तो अल्लाह पाक ने आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये दोनों दुआएं कबूल फरमाई कि मदीने में भी उनकी वफ़ात हुई और मदीने ही मुनव्वरा में वो शहीद कर दिए गए। मदीने की मोहब्बत थी, बाहर जाना नहीं चाहते थे वो, और इसी वजह से ये यानी मकाम ऐसा मकाम है। हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अहले मदीना क़ियामत में असल में सिफारिश नसीब होगी, और सिफारिश की 10 किस्में हैं। अभी गुनाह कबीरा करने वालों की सिफारिश होगी, रफ़े दर्जात की सिफारिश होगी, जन्नत के खोलने के लिए सिफारिश होगी, और एक सिफारिश वो होगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मदीना के लिए करेंगे, जो मदीने में रहने वाले होंगे, हुजूर की मोहब्बत की वजह से जो मदीना मुंतकिल हो जाएंगे तो उनके लिए भी आप सल्लल्लाहु और मदीने में उनका इंतकाल हो जाएगा तो अल्लाह के नबी उनके लिए सिफारिश फरमाएंगे। बल्कि ये भी है ना कि रोज़े में एक मरतबा सिर्फ मेरी मोहब्बत की वजह से अगर कोई आएगा तो मेरी सिफारिश का हकदार होगा। तो बहरहाल वहाँ की हाज़िरी बहुत बड़ी सआदत की बात है, और वहाँ का क़ियाम हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है अगर किसी को मैसर हो जाए। लेकिन आदमी ज़ाहिर सी बात है, शर्त यह है कि वहाँ के आदाब को बजा लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में रह रहा है, हम तो जिस अंदाज में जाते हैं आते हैं, हमको वो हमारे दिलों में वो आज़मत और एहतराम नहीं है। ये जो अइमे इकराम गुजरे हैं, ये जो मुज्तहिदीन गुजरे हैं, फुकाहा गुजरे हैं, तो वो लोग तो पूरे मदीने में चप्पल नहीं पहना करते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये तो मुज्तहिद हैं, सभी जानते हैं। आम बुजुर्गों के वाक़ात हम सुनाएं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई ऐसे ही बातें हैं, ये तो फेंकते रहते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वक्त के यानी एक तो चारों अइमा में से हैं, मुज्तहिदीन में से हैं और मुहद्दिसीन में से हैं। और सबसे पहले हदीस की जो किताबें लिखी गई मुत्तफ़क़ अलैह तौर पर, सही किताब इमाम मालिक की है। बुखारी का दर्जा तो बाद में आता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है मुवत्ता मालिक, वो तो पहले की लिखी हुई है और सही यानी सबसे पहले लिखी जाने वाली सही किताबों में से सबसे पहली किताब वही है। तो वो उनके बारे में आती है बात कि मदीने मुनव्वरा में चप्पल पहन कर नहीं जाते थे कि जिस जगह पर अल्लाह के नबी के कदम पड़े हों, मेरी चप्पल जो मनहूस चप्पल है जिसको लेकर हम पूरी दुनिया में फिर रहे होते हैं, नापाक गंदी जगहों पर आ रहे जा रहे होते हैं, तो नबी के कदमों की जगह कैसे हम छूएं अपनी चप्पलों के जरिए। क्योंकि आज भी उन चीज़ों में असरात हैं, महसूस होती हैं, वो चीज़ें असर करते हैं। यानी उन चीज़ों में शऊर है, पत्थरों में शऊर है अल्लाह के नबी का, दरख्तों में शऊर होता था। रिवायतों में है ना कि पत्थरों ने कलमा पढ़ लिया है, दरख्त रोने लग गए थे, पत्थरों ने सलाम कर दिया, जबल अहद सलाम कर रहा है, जबल अहद हल रहा है, दीगर और पत्थर सलाम कर रहे हैं हुजूर को, कलमा पढ़ रहे हैं। तो पत्थरों में और बेजान चीज़ों में भी शऊर हुआ करता था और वो महसूस किया करते थे। इसी वजह से अल्लामा मूसा रूहानी अलबाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े यानी आलिम दीन गुजरे हैं, उनके बारे में आता, और बहुत बड़े आमिल भी गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम भी गुजरे हैं, बहुत अल्लाह वाले भी गुजरे हैं। उनके बातों में वाकयात में एक बात ये भी लिखी हुई है कि मदीने मुनव्वरा जब गए तो गज़वे बदर के पास वहाँ खड़े हो गए जाकर, और जाकर पत्थरों को खिताब करके कहा कि भाई अरे पत्थरों बताओ कि नबी के कदम यहाँ पर कहाँ थे। तो पत्थरों में से आवाज़ आने लगी, उनका वाकयात करामत, उनके करामतों में से करामत ये भी है कि पत्थरों में से आवाज़ आने लगी कि अल्लाह के नबी के कदम यहाँ हैं, अल्लाह के नबी के कदम यहाँ हैं, उन्होंने सुना है बाज़ाबता। वो तो ये बेजान चीज़ों में भी असर महसूस होता है, करामतें हैं, जाहिर सी बात है कि अल्लाह पाक जिसके साथ जो चाहे करामत जाहिर फरमा दें। तो उतने सालों के बाद भी साहब यानी जो हमारे मुज्तहिदीन गुजरे हैं, औलिया अल्लाह गुजरे हैं, मुहद्दिसीन गुजरे हैं, तो इतना ज़्यादा अदब व एहतराम मलहूज रखा करते थे कि अल्लाह के नबी का कदम पड़ गया वहाँ पर तो कैसे जो है ना हम बेहुरमती करें, अपने पैरों के ज़रिए, अपनी चप्पलों के ज़रिए उसको कैसे खुंदलें। और हमारी सूरत हाल ये होती है कि चप्पल लेकर रियाजुल जन्ना में चले जाते हैं, $5 की चप्पल होती है, 5 रियाल की चप्पल होती है जो लेकर फिर रहे होते हैं दोनों हाथ में, रोज़े पर सलाम पेश करने जा रहे हैं। अदब व एहतराम कैसा होना चाहिए वहाँ पर, रोज़े पर सलाम पेश करने के लिए हम जा रहे हैं, सरकार दो आलम के पास हम जा रहे हैं भाई, उनकी इज्जत, उनका मकाम, उनका एहतराम, अजीब व गरीब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम होना चाहिए दिलों के अंदर। और हाथ में एक हाथ में चप्पल है भाई, अगर ये गेट से वो गेट पर निकल जाएंगे तो चप्पल हमारी चोरी हो जाएगी, यहाँ से वहाँ तक आने की जो है ना हिम्मत भी बर्दाश्त नहीं, हिम्मत भी नहीं कर पाते, और जा रहे हैं हाथ में चप्पल ले लेकर। किस एहतराम के साथ जाना चाहिए। किस इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के वाक़यात में ये बात मिलती है कि मदीने मुनव्वरा में जब रहते, मक्का मुकर्रमा रहते, बैतुलखला से फारिग नहीं होते थे एहतराम की वजह से। ये सूरत हाल होती है हमारे बुजुर्गों की, तो अल्लाह पाक ने तब जाकर उनको ये मकाम अता फरमाया है। आज सारी दुनिया जो नाम लेती है इन मुहद्दिसीन का, तो इसी वजह से लेती है कि तकवा तहारत के आला मियार पर वो लोग फायज थे। हम बड़ी आसानी के साथ उनके बारे में ज़बान दराजी कर देते हैं। एक तरफ वक्त के मुहदिस भी हैं, इल्मी खिदमात भी हैं, हदीसों को लिखा है, मसाइल को लिखा है, कुरान और सुन्नत से मसाइल अख्ज़ किए हैं वगैरह वगैरह, दूसरी तरफ आमली तौर पर तकवा तहारत के ऐसे पैकर थे वो लोग कि उसकी नज़ीर हम पेश नहीं कर सकते। वह रात रात भर इबादतों में मशगूल है, रात रात भर नमाज़ों में मशगूल है, रात रात भर तिलावत में मशगूल है, रात रात भर अल्लाह की याद में मशगूल है, तभी जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने यह मकाम अता फरमाया उन हजरात को। तो बहरहाल हुजूर की दुआ का असर ये है कि आज मदीने मुनव्वरा जो है सबके दिलों की जान है, अल्लाह ने सारे यानी सारी सारे मुसलमानों के दिलों में उसकी मोहब्बत अल्लाह पाक ने जो है ना पैवस्त फरमा दी, हर आदमी उनसे मोहब्बत करता है। और वहाँ की बीमारियाँ वगैरह आज कोई बीमारी महसूस नहीं होती वहाँ पर, तो अल्लाह पाक ने वहाँ की बीमारियों को भी बिल्कुल ख़त्म फरमा दिया। ठीक है, इंशाल्लाह फिर पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا الله سبك غناؤكم معاف فرمائيه، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرمائیے، ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائیے، اس کی کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، اللہ درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائیے، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائیے، یا اللہ اس کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائیے، یا اللہ دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائیے، दोनों जहाँ की इज़्ज़त नसीब फरमाइए, दोनों जहाँ की ज़िल्लतों और रुसवाइयों से हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह कब्र की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी आसान फरमाइए, हुजूर की शफाअत नसीब फरमाइए। कसरत से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने वाला बनाइए, हमारी इबादतों को कबूल फरमाइए, आमाल को कबूल फरमाइए, नमाज़ों को कबूल फरमाइए, फ़राइज़ वाजिबात सुनन और मुस्तहबात की अदायगी का अहतमाम करने वाला बनाइए, इखलास के साथ इबादतों का करने वाला बनाइए। किसी भी काम में या अल्लाह इखलास पैदा फरमाइए। या अल्लाह इदारे को तरक्कियात से मालामाल फरमाइए, इससे इस ताल्लुक़ रखने वालों की या अल्लाह मदद फरमाइए, हर एतबार से जान में, माल में, इज़्ज़त में, सेहत में बरकत अता फरमाइए। यहाँ तमाम हाजरीन मजलिस की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाइए। जो बीमार हैं उनको सेहत कामिल व आजिल नसीब फरमाइए। जो मकरूज़ हैं कर्ज़ों की अदायगी के इंतजाम फरमाइए। जो जिस किस्म की परेशानी में मुबतला है उनकी उस परेशानी को दूर फरमाइए। या अल्लाह बेरोज़गारों को हलाल रोज़ी नसीब फरमाइए। या अल्लाह बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाइए। या अल्लाह जो बे निकाह हैं उनके लिए मुनासिब बेहतरीन रिश्तों का नज़म फरमाइए। या अल्लाह दीन और दुनिया के हर किस्म के फितने से हमारी हिफाजत फरमाइए, हर शर से हमारी हिफाजत फरमाइए, हर बुराई से हमारी हिफाजत फरमाइए। हमारी दुआओं को महज अपने फ़ज़्ल व करम से कबूल फरमाइए। वसल्ली वसल्लम मुबारक अला सैयदिल मुरसलीन व अला आलिही व सहाबिही अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।